તારીખ 6/5/1994 દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા બોરીવલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 91 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
માર્ગ કા દર્શન નહીં હોતા, પર વો માર્ગ કે લિયે ભી જો જરૂરતા હૈ, કહેતા હૈ ના જરૂરતા હૈ કા મતલબ ઉસકો ખાતા હૈ, હિન્દીમાં આતા હૈ જોડના, ક્યા હોતા હૈ તડપતા હૈ, કૈસે તડપતા હૈ કે જૈસે પાણી કે બિના મછલી તડપતી હો, મર જાય જિંદા રહેના મુશ્કિલ હો જાય, એસે પરિસ્થિતિ વાલે કો इस मार्ग की दिशा का कुछ अंश समझ में आता है. क्या मार्ग पाना, तो पाना तो आगे की बात है, मार्ग की दिशा का कुछ अंश समझ में आता है कि इस दिशा में हमें जाना चाहिए. ऐसी परिस्थिति में सत्पुरुष का, योग का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारा आज के स्वाध्याय का विषय है. तो कहते हैं कि इतना मूल्यांकन जिसको होता है, जब कुछ भी कर ले किंतु मार्ग दिखाने वाले नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो भी हम इसके लिए तड़पते नहीं होंगे, तो मार्ग मिलने वाला नहीं है. और जो तड़पते हैं उनको मिल जाता है मार्ग दर्शाने वाला, तो उनकी नजर में सत्पुरुष है, वो सत्पुरुष के रूप में नहीं दिखाई देता, वो परमेश्वर के रूप में दिखाई देता है. भले ही वो मनुष्य है, शकल मनुष्य की है, लेकिन वो शकल नहीं दिखाई देती है, उसका भावात्मक मूर्ति जो है वही देखने में आती है. पर ऐसा प्रकार होना, मुमुक्षु के जीवन में ऐसा प्रकार होना, ये इसके उत्तम पात्रता को सूचित करता है. किसको सूचित करता है? उत्तम प्रकार के, उत्तम कोटि की प्राप्त पात्रता को ये सूचित करता है. और यही मुमुक्षु का परम धर्म है, यही खास धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है. यहाँ तक आना ही चाहिए मुमुक्षु को, अगर यहाँ तक नहीं आया तो मुमुक्षुता जो अंश में आई है उसको मुमुक्षुता में क्या कहेंगे, सब बेकार की बात हो जाएगी. परमेश्वर के रूप में वो भावात्मक मूर्ति देखने में आती है, भाव में रहती है, ऐसा एक प्रकार बनता है. जिन पर तो कोई शकल वकल से मतलब नहीं है, भावात्मक मैंने द्रव्यात्मक नहीं उसको भावात्मक कहते हैं. आप ले जाना चाहते हैं द्रव्यात्मक में, हम ले जाना चाहते हैं भावात्मक में, ये प्रश्न का मेल खाता नहीं है. इसका क्या उदाहरण दें, उस तो ये अनुपम है, उसकी कोई उपमा तो मिलती नहीं है. जैसे आत्मा परम पदार्थ है, अनुपम पदार्थ है, वो परमात्मा स्वरूप है, परम ऐश्वर्य स्वरूप में, इसकी कोई उपमा है क्या? जब इसकी उपमा नहीं है तो ऐसा भावात्मक प्रकार है, इसकी उपमा क्या हो सकती है बताइए. एक दृष्टांत सुबह दिया था कि जैसे कोई कैंसर को मिटाने वाला मिलता है तो उसको क्या कहेगा वो, कि डॉक्टर नहीं था किंतु भगवान था, मृत्यु के मुख में से मुझे बचा लिया. जो बचेगा उसको भवाएगा, जो बचेगा उसको ये बात की समझ आएगी. अब अनंत मृत्यु से बचाने वाले के लिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो एक मृत्यु से बचाने वाले के लिए बात करते हैं, उसको भी भगवान कहता है। अनंत मृत्यु से बचाने वाले को क्या कहेंगे, क्या अंदाज है इसके पीछे कि अरे ऐसा योग नहीं बना हुआ होता तो मेरा क्या होगा, न जाने में कितने अनंत काल तक जन्म मरण में जन्म मरने में बताया गया था। इसका पूरा अंदाज आता है, पूरा नुकसान से बच गया इसका पूरा अंदाज आता है, पर अब मैं अनंत काल तक सादे अनंत काल तक अनंत सुख में विराजमान हो जाऊंगा इसका भी पूरा अंदाज आता है। तब इसका मूल्य कैसे करें, इसका कोई मूल्य हो सकता नहीं है। वो तो बची गया, जिसने जिसको परमेश्वर बुद्धि हुई वो तो एक न्याय से तो बची गया, भले ही सिद्धपद बाद में होगा पर तब कहेंगे कि वो तिर गया, लेकिन इसका एहसास, इसकी प्रतीति, इसका विश्वास अभी आ जाता है। आप व्यापार करते हो, व्यापारी बने बनिए लोग, एक माल का पड़ता खाता है कि हमारे गांव में उतना भाव है वहां उतना भाव है, पर इतना व्यापार आसानी से लेना देने का बार्गेनिंग सौदा जम जाता है तो उस वक्त मुनाफा मिल गया उतना अर्थ होता है कि नहीं होता है? आपने माल भी खरीद भी कर लिया, बेच भी दिया, लेकिन खरीदा हुआ आया नहीं, डिलीवरी दिया नहीं, पैसा घर में आया भी नहीं, लेकिन बात पक्की हो गई, नॉन ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, पैसा मिल गया उतना अर्थ होता है कि नहीं होता है? वो पैसा आएगा जो आएगा, खर्च तो अभी से चालू हो जाता है, कभी कभी तो खर्च पहले से चालू हो जाता है कि इतने आने वाला है तो खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये जीव का स्वभाव है ऐसा, यहां तक कोई राह देखते नहीं है, कोई इंतजार करते नहीं है, उतना पहले से होता है, हर्षोल्लास होता है उतना। तो ऐसा होने के साथ साथ जगत के दूसरे प्राणियों के प्रति कैसे भाव रहते हैं कि यह बुद्धि परम दीनता को सूचित करती है, सतपुरुष के प्रति परम विनय उत्पन्न होता है। ये परम विनय उतना विनय है कि फिर सभी प्राणियों के मूल स्वरूप को देखने के लिए उनको ऐसा ही लगता है कि जैसा मैंने देखा ऐसा परमेश्वर पद हर प्राणी में है, तो उसके प्रति भी अपना दासत्व माना जाता है, उसके प्रति भी ऐसा भाव बहुत कुदरती रूप से साथ साथ ही उत्पन्न होता है। ये एक साथ दो प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, इधर ये होता है सत्पुरुष के प्रति तो उधर दूसरे प्राणियों के प्रति हो जाता है। वहां कोई ये सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ऐसा ही भाव आता है कि हम हमारे से एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक का किसी भी प्राणी को हम दुख के कारक मन से, वचन से, काया से होना चाहते नहीं है। सभी इस धर्म की प्राप्ति करे, सुखी हुए ये भाव तो आता है, तो बाद में ये नहीं दुखी नहीं हुए ये भाव साथ ही साथ आई गया, ये बहुत सहज है। और यहां से ही परम योग्यता की प्राप्ति होती है, ये पात्रता है, तो अच्छी से अच्छी पात्रता है ऐसा कृपालु देव कहते हैं। ये पात्रता बहुत बढ़िया पात्रता है, इस जीव का अवश्य अवश्य आत्म कल्याण होने वाला है ही। यह परम दीनता जब तक आवरित रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं कैसे किसी भी कारण से, अयोग्यता, किसी मैंने अयोग्यता के कारण से ऐसा प्रकार नहीं हो रहा है, उसमें कमी हो रही है या कोई विपर्यास हो रहा है, तब तक जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है, तब तक जीव मुमुक्षुता में आगे बढ़ने वाला नहीं है। ऐसे परिणाम हुए बिना कोई मोक्ष जीव मोक्ष मार्ग के प्रति योग्यता में आगे बढ़ने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले, कषाय की मंदता से कुछ भी करे, चारित्र गुण का क्षोभ, ज्ञान के क्षोभ से भी कुछ भी कर ले, शास्त्र के शास्त्र पढ़ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। एक बीच में ये बात है, ऐसे बात पर सापेक्ष कही जाती है, वास्तव में स्वसापेक्ष है, क्योंकि योग्यता की बात चलती है, लेकिन ये योग्यता सत्पुरुष के साथ संबंधित होने से लगता है कि ये निमित्त प्रधानता से बात आती है, वास्तव में ये उपादान प्रधानता की बात है, क्योंकि ऐसी सूझ क्यों आई, सबको तो आती नहीं। जैसे हम दृष्टांत लेते हैं कि कोई प्रसिद्ध सत्पुरुष होते हैं गुरुदेव जैसे, जिसकी बहुत ख्याति पूजा भी होती है, लेकिन क्या सबों को परमेश्वर रूप में वो दिखाई देता है, या कितने को दिखाई देता है, क्या होता है? मानते हैं ज्ञानी है, गुरु है, उपदेशक है, उपदेश सुनते हैं, लेने को जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बुद्धि आती है क्या, ये सवाल है जी। जिसको ऐसा भाव आया कि निमित्त में आया या उपादान में आया, तो उपादान में आया, तो ये योग्यता उपादान की सूचक है, निमित्त की सूचक नहीं है। बात या निमित्त से कही जाती है, लेकिन किसकी, उपादान की कही जाती है, निमित्त की नहीं की जाती है। इसकी भूमिका वो होती है कि मुझे अब संसार में परिभ्रमण करना नहीं है, मुक्त होने की जरूरत लगी है उसको, क्या उपद्रव तो बहुत लिखते हैं इसके विषय में कि मुक्ति मिलना तो आसान है, किंतु मुक्ति दाता मिलना उतना आसान नहीं है। उसमें क्या कहना है, क्या अनंत बार सत्पुरुष नहीं मिले हमें, सर्वज्ञ नहीं मिले हमें, तीर्थंकर अनंत बार नहीं मिले, अनंत बार समस्वरण में नहीं गए, वो मुक्तिदाता नहीं थे क्या? तो बात निमित्त की नहीं है, बात तो उपादान की है कि हमने सत्पुरुष में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, क्योंकि हमें मुक्ति की जरूरत भी लगी नहीं। सम्यक दर्शन निसर्ग जो होता है वो भी पहले सत्पुरुष मिलने के बाद संस्कार होता है, उसको निसर्ग जो होता है, पहले तो कहीं ने कहीं पूर्वभव में भी उसको मिले ही मिले हैं और मिले ही हैं, इसके बिना तो छुटकारा है ही नहीं। वो तो इसे मौकर पढ़ा कर नहीं पढ़ा, तो फिर इसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। इसमें लिया है 700 में हो, 172 में आत्मा जब निसर्ग अथवा अधिगम सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करता है और पर समय को त्याग करके स्व समय को अंगीकार करता है, तब आवश्यक कर्म बंधन से रहित होता है। धर्म की प्राप्ति के वक्त सच्चे देव या गुरु की हाजिरी हो तो उसे अधिगमत सम्यक दर्शन कहने में आता है, और उस वक्त हाजिरी न हो परंतु, क्या लिखा है अब आता है, परंतु पूर्व काल में ज्ञानी के पास से देशना सुनी हो, उपदेश सुना हो, उस वक्त सम्यक दर्शन पाया न हो, किंतु पापीछे से पूर्व संस्कार को लेकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, तो निसर्ग सम्यक दर्शन कहने में आता है। ज्ञानी किसी भाव में न मिला हो, कभी पूर्व में मिला ही न हो, और अपने आप सम्यक दर्शन कोई प्राप्त कर ले अपने उपादान से, ऐसा कोई निसर्ग का अर्थ होता नहीं, और ऐसा कभी बनता भी नहीं है। परंतु धर्म पाने वाले को उसी भाव में ज्ञानी का समीप पना नहीं है, ऐसा निसर्ग शब्द बताता है। बिना ज्ञानी अपने आप धर्म को प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं है, और अपनी लायकात योग्यता न हो और ज्ञानी न मिले ऐसा भी बनता नहीं है। हमारे यहाँ प्रश्न आता है, बार बार ये प्रश्न आता है कि ज्ञानी अब नहीं है क्या करें, और ज्ञानी को कहाँ ढूंढे। ज्ञानी को ढूंढना है, अपनी योग्यता को तैयार करना नहीं है। कहते हैं कि अपनी योग्यता हो और ज्ञानी न मिले ऐसा भी कभी बनता नहीं है। योग्यता वाले के साथ ज्ञानी की भेंट करा देना ये कुदरत का कार्य है, और कुदरत इसमें बंधी हुई है। इस कार्य करने के लिए कुदरत स्वयं अपनी सेवा प्रदान करती है, वो तो अपनी सेवा देगी देगी और अवश्य देगी। है जी, सुगानी जी का उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। ये योग्यता तैयार हो गई, बहुत छटपटाते थे, उतने छटपटाते थे कि जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। क्या आयु समाप्त हो जाए उतनी वेदना थी। तो क्या हुआ, प्रचार वाला आत्मधर्म वहां पहुंचा है। तो आत्मधर्म पहुंचा तो उसमें से हवा आ गई कि पानी इधर है, ठंडी हवा आती है पानी उधर होगा, हमको जाना चाहिए, तृषा लगी हमको जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। चले गए, 600 मील की मुसाफरी किया, 900 किलोमीटर होगा करीब, सोनगढ़ अजमेर, अजमेर से निकले थे उस वक्त। तो मिल गए कि नहीं मिल गए। उन्होंने ये भी शिकायत नहीं की गुरुदेव के पास कि आप हिंदी में प्रवचन करिए, मैं नहीं समझूंगा, मैं कभी गुजरात में आया नहीं, गुजराती भाषा समझे समझता नहीं, सुनता नहीं, सुना नहीं कभी, आप गुजराती में फरमाइए, हिंदी में फरमाइए, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं बोले वो। उस वक्त तो नहीं बोले, बाद में भी वो कभी नहीं बोले कि हमें हिंदी में समझना है, तो भाव कर रहे थे
क्या?
नहीं, उनकी योग्यता में कमी क्या है कि वो भाषा को पकड़ने के लिए सावधान है, जबकि भाव को पकड़ने के लिए सावधानी उतनी नहीं है। ये बात है, हमारी सावधानी कहने वाले को कहके भाव को पकड़ने पर होनी चाहिए, फिर कोई बात नहीं समझ में आए पूछ लेनी पड़ती है, अलग बात है। लेकिन भाव पर सावधानी नहीं हो, और शब्द पर सावधानी हो, भाषा पर सावधानी हो, तो भाव छूट जाएगा। हाँ?
तो
आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भी बोलने को नहीं सीखे हैं उनके भाव आप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? जो बच्चा भी बोलने को भी नहीं सीखा है मेरी बात सुनी आपने कि आपके छह सात छह महीने का जो बच्चा है उनकी उनकी वो भाषा आप भी जानते नहीं, आप भी इनकी भाषा जानते नहीं, फिर भी आपस में व्यवहार होता है कि नहीं होता है? हाँ, कैसे होता है? होता है, भाव को पकड़ते हैं तो सब बात होती है। वहाँ भाव पकड़ने का हमारा प्रयास रहता है और यहाँ वहाँ हमको सुविधा चाहिए, भाषा की हमें सुविधा चाहिए। तो हम भाषा के पकड़ में रहेंगे, भाव की पकड़ हमारी छूट सकती है, छूट जाती है, यही होता है। देखिए भाव है वो चैतन्य के पर्याय हैं और भाषा के जड़ के पर्याय हैं। आपका भजन कहाँ है, आपका लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य तो दो जगह रहेगा नहीं, लक्ष्य तो दो जगह रहता नहीं, एक जड़ और एक चैतन्य। चैतन्य पर लक्ष्य रहेगा तो जड़ छूट जाएगा, जड़ पर लक्ष्य रहेगा तो चैतन्य छूट जाएगा। देखो ना ये क्रियाकांड को क्या होता है, जो उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते, एक दिन दो दिन पांच दिन पंद्रह दिन महीने महीने भर का उपवास करते कि नहीं, फिर इसके परिणाम बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं वो नहीं देख पाते। हमने उतना कर लिया, बस हमने आठ दिन का उपवास कर लिया, उसमें परिणाम कैसे हुए कुछ पता नहीं लगेगा, खुद को भी पता नहीं लगेगा। तो जिसकी बाह्य क्रिया पर दृष्टि है वो अंतर क्रिया को छुप जाते हैं, जिसकी अंतर क्रिया पर दृष्टि है तो बाह्य क्रिया को छुप जाए तो उसकी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी बात है, इसलिए आत्मा को अंत तत्व बताया और एक समय की पर्याय को बहिर तत्व बताया, छोर दृष्टि पर्याय की, स्वरूप की दृष्टि करने से पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात यहां तक ले गए हैं। क्या क्या नहीं लगी थी, तड़प नहीं लगी थी? कैसे रखेंगे, गरजवान होते हैं वो शर्त रख सकते हैं क्या? गरज भी हुए और शर्त भी रखे, दो बात बनती है एक साथ क्या? हम शर्त रखते हैं तो हमारी गरज नहीं है, उतनी अनुकूलता होगी तो हम हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं। अगर ये उतनी सुविधा नहीं मिली तो हमारे लिए आत्म कल्याण करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। ये बात उसको कभी करना नहीं है, किसी भी हालत में उसको नहीं करना है, वास्तव में वो बात है। ये तो बहानाबाजी है और कुछ नहीं है। गुरु की बाणी सुना माने क्या है? कि गुरु के भाव को समझे, इसका नाम गुरु वाणी सुनी। अगर भाव को नहीं समझे तो गुरु वाणी सुनी हो तो भी सुनी नहीं है।
वो बात नहीं कहती है, वाणी बीच में आती है तो उसका अपने दिल के ऊपर है कि वो तो वाणी सुनना चाहते हैं, वाणी से समझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो नहीं समझना, ऐसा नहीं उसके भाव में।
ठीक बात है, लेकिन आपको भजन कहाँ देना है, वाणी पर देना है या वाणी के पीछे जो भाव है उस पर देना है? मेरा ये सवाल है। वाणी पर भजन देना नहीं, वाणी पर भजन देंगे तो आप कभी झगड़े में उतर जाएंगे, ज्ञानी के साथ भी झगड़ा हो जाएगा आपका। क्यों? पहले आपने वो शब्द किया था, अब आप यही शब्द का एहसास करते हैं, पहले वो शब्द का एहसास करते थे, अभी शब्द का एहसास करते हैं, ये बात हो जाएगी। क्या
पहले इस गाथा आपने ऐसे समझाई थी, अब यही गाथा आप ऐसे समझा रहे हैं, ये बात हो जाएगी, क्योंकि आपको तो लेना देना वाणी से है, ज्यादा ऐसा नहीं चलता है। गौण करो वाणी को, गौण करो, वरना खींचा तानी हुए बिना रहेगी नहीं। अब देखिए अपन बैठे हैं, वैसे दो भाषा वाले हैं, गुजराती भाषा वाले भी है और हिंदी भाषा वाले, दोनों पकड़ करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है, संभवित है दो भाषा में एक साथ बोलना, संभव तो नहीं है, तो खींचा ताने तो छोड़नी पड़ेगी, ऐसी बात है। कहते हैं कि योग्यता हो और ज्ञानी न मिले ऐसा भी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, नहीं बनता मतलब कभी नहीं बनता है। और दोनों सम्यक्त्व में पुरुषार्थ एक सा है, सरीखा पुरुषार्थ है, निसर्ग में ज्यादा पुरुषार्थ है। सोना लेने को जाएंगे तो 5000 में जितना आएगा उतना आएगा, 10000 में उतना डबल आएगा, लेकिन 5000 में आएगा उतना 6000 में इससे डबल चाहिए तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। योग्यता का प्रतिबंध इस प्रकरण में भी उठ जाना चाहिए, क्या मुख्य की योग्यता का प्रतिबंध कहें यानी मोक्ष की अयोग्यता कहें, इस मुद्दे पर नहीं रहनी चाहिए, अयोग्यता नहीं होनी चाहिए या इस प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब ही मार्ग मिलेगा, इसके पहले किसी को मार्ग न मिला है न मिलने का कोई सवाल पैदा होता है, ऐसी योग्यता में आना ही चाहिए। कदाचित ये दोनों प्राप्त हो, आगे कहते हैं कि कदाचित ये दोनों मैंने क्या कि इस लोक की अल्पभी सुखेच्छा वाला प्रतिबंधक कारण रहा न हो। एक ज्ञानी पुरुष मिले भी है, पहचान भी हुई है, परमेश्वर बुद्धि भी दी है, मिलने की कमी भी नहीं रही, ये दोनों बात हो चुकी है। तथापि वास्तविक तत्व पाने की उस योग्यता की न्यूनता के कारण पदार्थ निर्णय न हुआ हो ऐसा भी बनता है, जबकि ये बात लंबे काल तक चालू रहने वाली नहीं है। चार तब तो ये स्टेज है, ये स्टेज में आने के वाले के लिए ही समझने योग्य है या प्रयोजन भी है, नीचे वाले के तो उसका इतना प्रयोजन अभी वर्तमान में नहीं बैठता है, इसलिए विषय थोड़ा अधिक सोचना है। दोनों हो गया, क्या हुआ है, दसने बार बात भी समझ में आई थी, कहां से एक बार समझ में आना थोड़ी कठिन पड़ी, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ न्यूनता हो रहती है तो पदार्थ निर्णय यानी सारो भाषण आत्मपरीक्षा नहीं हुआ हो ऐसा बनता है। इतनी हद तक आने के बाद भी ऐसा बनता है, कुछ काल तक ऐसा बनता है, कुछ काल के लिए ऐसा बनता है, ये भी परिस्थिति है। वरना कि ये दोनों कारण बनते ही तीसरा कारण बन जाता है उसी मोमेंट उसी क्षण में बन जाता है, लेकिन नहीं, उसमें कालांतर है, कुछ काल लगता है, किसी को कुछ काल लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को थोड़ा ज्यादा भी लगता है, लेकिन अब वो भटकने वाला नहीं है। नहीं भटकने का दो कारण है कि एक तो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा नहीं है, कहां भटकेगा, भटकने का स्थान तो उसको लोक में रहना नहीं, दूसरा माथे पे सत्पुरुष परमेश्वर बैठे हैं वो भी उसको भटकने देगा नहीं, तो मंदिर का भटकने का तो सवाल नहीं होता है। लेकिन पदार्थ निर्णय नहीं हुआ है तो योग्यता का कुछ न कुछ न्यूनता वाला प्रतिबंध है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जी अज्ञान पुरुष और दक्षिण पुरुष का होता भी है, लेकिन वो कोई प्रतिबंधक कारण नहीं, प्रतिबंधक कारण तो बहुत कुछ होता है, स्वरूप का उतना ही होता है। यह स्वरूप निश्चय के करने की दिशा में उस जीव का उपयोग हो उसमें उतनी सावधानी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी अंतर खोज होनी चाहिए, जैसे ज्ञान का पदार्थ मिलने कहां से होगा, ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव का भावभाषण होगा। तो अपने चलते हुए ज्ञान भाव में उपयोग में स्वभाव क्या है उसका निर्णय करने के लिए इस उपयोग में जो पता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, दरकार होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए इस दरकार पूर्वक कि परिस्थिति इस जो मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में वर्त रही नहीं है। उसको कुछ न्यूनता कहने में आई है, कुछ न्यूनता मैंने अल्प न्यूनता है। ये विपरीतता उतरी नहीं है, पुरुषार्थ तो भी नहीं जगा है लेकिन उतनी जो दरकार आनी चाहिए वो नहीं है। और उतनी जितनी निर्मलता स्वभाव को सहज मात्र में ग्रहण कर ले उतनी निर्मलता की न्यूनता है। निर्मलता नहीं है तो भी नहीं है और भाव भाषण हो गए उतनी ही है ऐसा भी नहीं है, कुछ न्यून है, कुछ न्यून है ये बात है। तो ये दोनों हो जाए इसके बाद की बात है, इसके पहले वाले को तो कोई बात लागू पड़ती नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए। देखिए पत्र में कितना सूक्ष्म विषय चला है, सुखाव जी के पत्र में कितना सूक्ष्म मोक्ष की भूमिका में भी कितने सूक्ष्म परिणाम होते हैं कि इतनी योग्यता पाने पर भी भाव भाषण नहीं होता है तो कुछ न्यूनता तो चित व्याकुल रहता है। क्या होता है, क्या क्या होता है कि चित व्याकुल रहता है, किसी को व्याकुलता होती है कि पदार्थ निर्णय क्यों नहीं हो रहा है, किसको दर्शन परिषद कहते हैं, ज्ञान परिषद कहते हैं। और कभी व्याकुलता नहीं रहती है तो निश्चय संतल जाती है, निश्चय संतल में भगवान को यह संतुष्ट हो गया वो बात नहीं है लेकिन उतना प्रयास इस दिशा में जो चलना चाहिए तो सहज नहीं चल रहा है। इसका कारण कुछ न कुछ समता भाव है, समता भाव है तो वो सही नहीं है मिथ्या है ऐसा कहते हैं। यानी कुछ न कुछ रूप कल्पना का कोई अंश रहता है कि मेरे आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सुना है ना, सुनता है पढ़ता है सत्संग करता है तो उसमें कुछ न कुछ जो कल्पना है उतना भी प्रयास अवश्य है। कल्पना नहीं करे और जिज्ञासा में आ जाए, पर जिज्ञासा में आ जाए उतना नहीं अपूर्व जिज्ञासा में खड़ा रहे ये सही भूमिका है। तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाए कि क्या क्यों नहीं देखने में क्यों नहीं आता है, जब ये वर्तमान उपयोग में ज्ञान स्वभाव प्रकट ही है प्रसिद्ध ही है फिर मुझे देखने में क्यों नहीं आता है। और मेरे परमात्मा का वियोग भी मुझे क्यों बर्दाश्त हो रहा है, ये भी बर्दाश्त होना चाहिए नहीं, ऐसी बात है। स्थूल संतोष नहीं है लेकिन बर्दाश्त होता है, इतनी समता है। क्या बर्दाश्त होता है वो भी एक समता है, नहीं बर्दाश्त पाते हैं मार्ग नहीं मिले अपने प्रभु का दर्शन नहीं हो तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए ऐसा हो जाता है। एक के पीछे लगे पूरे इसके पीछे लग जाए पूरी शक्ति से पूरी ताकत से ऐसा प्रकार में वो मिल जाता है। अगर उसमें न्यूनता रही तो मिलने वाला नहीं है। परम पदार्थ को आदर भी परम होता है तब वो पधारने का इसका होता है। परमेश्वर पर्याय में कब पधारेगा कि पूरा आदर होगा तब, अधूरा आदर से ये आता नहीं है, ऐसी बात है। ठीक, उसी को समता कहते हैं। ज्यादा चर्चा तो इस विषय इस भूमिका में कोई जीव आता है उसी को इस विषय की जिज्ञासा में या आगे बढ़ने में कोई अड़चन होती है तब ये चर्चा और चल सकती है। फिर जिसको भूमिका ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर समस्या का समाधान भी कहां से होगा? अगर होगा तो समस्या ही नहीं है तो समाधान भी किसका? जब समस्या ही नहीं तो समाधान भी किसका? तो समाधान भी उनके लिए तो होना नहीं होना एक ही बात हो जाती है, एक जानकारी का विषय हो जाता है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सूक्ष्म बातें ली हैं। कल्पित पदार्थ में सबकी मान्यता होती है, ये सुना हुआ है, उसमें कुछ न कुछ अंश में कल्पना हुई हो, ये भी संभव है। जिससे काल क्रम से यानी कुछ काल जाता है, चलता चला जाता है, अपूर्व पदार्थ में परम प्रेम नहीं आता। देखो यहां प्रेम प्रकरण दिया है, अपूर्व पदार्थ में ऐसा पदार्थ है कभी पूर्व में इसका दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कोई अपूर्व पदार्थ है यानी साक्षात सिद्ध पद मूर्ति मंत है, प्रत्यक्ष अनंत प्रत्यक्ष का तेजस्वी मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है, अद्भुत से अद्भुत आत्मस्वरूप है, उसको यहां एक शब्द में कृपा देव कहते हैं अपूर्व पदार्थ है। और देखते ही उसके पर जो प्रेम आता है वो परम प्रेम आता है, उत्कृष्ट प्रेम आता है, चरम सीमा का प्रेम आता है। अनंत प्रेम की मूर्ति का दर्शन होने से प्रेम का समुद्र भी उछलने लगता है, क्या उसका समुद्र उछलता है भीतर वैसे, जैसे इतनी गर्मी होने के बावजूद भी गुरुदेव कहते थे 118 डिग्री का सूर्य का ताप हो तो वे समुद्र में भरती कहां से आती है कि मध्यवर्ग में से उछलता है, वो ऐसे भरते आते हैं। परम प्रेम वहां नहीं आता, ये भी एक परम योग्यता की हानि है, योग्यता की हानि नहीं लिया, परम योग्यता जो चरम सीमा की योग्यता है इसकी हानि है ये। यहां तो एक एक परिणाम का नाप निकाला है, स्टेज के कौन से परिणाम होते हैं, सम्यक दर्शन की बात बहुत आगे है, तो अभी तो भाववासन का विषय चलता है, तो भाववासन आने के पहले इतने स्टेज में से कोई गुजरता है उसको भाववासन होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, भाववासन ही नहीं होता सम्यक दर्शन होने का तो सवाल पैदा होता है। बाद में पुरुषार्थ का प्रकरण है, जब भावभाषण होता है तो चैतन्य वीर का उछाला आए बिना नहीं रहता, गुरुदेव ने दिया है परमानुसार में वापस नाम रखते हैं लिया है इसमें 210 नंबर में देख लो है, 15 नंबर में है ना, पेज नंबर में हिंदी में गुजराती में लिया है, गुजराती में
प्रारंभ में विधि बुद्धिपूर्वक का करने का है, थोड़ा प्रैक्टिस बनने से सहज हो जाता है, बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है। जैसे हम पहले समझे कि ये हमारे घर वाले हैं, ये पड़ोस वाले हैं, तो पहले समझ में तो हमें बुद्धि लगाते हैं, फिर देखते ही मालूम पड़ता है हमारे वाले नहीं है, बुद्धि लगानी पड़ती है। दूसरा दूसरे रूप में दिखता है, पराया पराई दिखता है, पढ़ाई की कोई बुद्धि लगाने की कोई वहां एक्सरसाइज नहीं होती, देखते ही मालूम पड़ता है कि पराया है, तो प्रैक्टिस से सहज हो जाता है,
परिचय
से प्रैक्टिस से काम सहज होने लगता है। शुरू शुरू में तो स्वाध्याय तो इसलिए है कि बुद्धि लगा ले अपन, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक घंटा स्वाध्याय हो गया, हमारा काम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, नहीं, बाद में स्वाध्याय के काल में भी और स्वाध्याय के बाद में भी हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाना
चाहिए, मेन बात है, बराबर।
जब काम होगा, जहां तक हमको हमारा कार्य संपन्न न हो वहां तक हम उसके पीछे लगे ही रहे। पूरा उद्यम करना है शक्ति को छिपाए बिना, पूरा उद्यम से काम करना है, ऐसा अभिप्राय में आगे बढ़ते हैं तो मार्ग सुगम है और सरल है।
जब एकाग्रता आती है वो भी तो बुद्धिपूर्वक पहले
वो आपको एकाग्रता में अभी नहीं जाना है, तो सहज चीजें एकाग्रता, एकाग्रता करनी नहीं पड़ती, करनी है भी नहीं, हो जाती है एकाग्रता, चीज ऐसी बात भी ऐसा ही है, हमारा भी कोई विषय में एकाग्रता हो जाती है, वो करनी नहीं पड़ती है, उसको बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है, हो जाती है। ऐसे यहाँ भी अनंत सुख का धाम होने से और वो दिख जाने से हमारे परिणाम आकर्षित होने लग जाएंगे, अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, पर ये कॉन्सेंट्रेट हो जाने से एकाग्रता जम जाएगी, जाएगी करने नहीं पड़ेगी। तो उस ध्यान किया था ना, ध्यान उनको हो गया था, हम हमारी पद्धति से देखते हैं, हमारी नजर से दूसरों को देखते हैं, ऐसा है ही नहीं, उनको हो गया था। अच्छा ये चक्रवर्ती होते हैं, सब सुविधा उनको होती है, तो क्यों जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि इसका उपयोग लगता नहीं है, उसको कुछ छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है, तो मैं राज छोड़ रहा हूँ, रानी छोड़ रहा हूँ, ये वैभव छोड़ रहा हूँ, अनुकूलता छोड़ रहा हूँ, इसको कोई उसको दुख नहीं होता है, तो उसको आर्द ध्यान नहीं होता है। जैसे हमारे नाक में ये कप भर जाता है तो हमको भारी भारी लगता है, तो निकाल देते हैं, रख नहीं सकते, तो उस बोझा को उठा नहीं सकते हम, बोझा रुक लगता है तो ऐसे ही निकाल देते जोर से, जैसे उनको ये बोझा हो गया सारा, तो सहज छूट जाता है, सब जो छूट जाता है, तो अच्छा हम उसको तर्क लड़ाए वहां पर कि भाई वो जंगल में क्यों चले गए, इनके जो परिवार तो बहुत हो बड़ा होता है, उनको तो 56,000 रानियां तो हैं, लड़के कितने लड़कियां कितनी होगी, लाखों की संख्या में तादाद में ये सब होता है उनके परिवार में, तो कोई उनको ऐसा नहीं कहेगा महाराज, या जो भी कहते हैं जो भी भाषा से बोलते हैं, कि आपको तो एकांत में ध्यान करने का है न, तो अपने तो बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, उसमें एक अच्छे से झोपड़ी बना रहे, आप जैसे चाहो ऐसा कर दे, उसमें महल चाहो तो महल कर दे, झोपड़ी चाहो तो झोपड़ी कर दे,